सुंदर सनम असंग जिस भक्त प्रसाद
कोई भी विषय यदि हो स्त्री तो एक रूपक मात्र वहां है। ये श्लोक स्त्रियों के लिए नहीं है। यदि कोई भजन है करने वाली अकिंचन तो उसके लिए यह प्रयुक्त होगा कि नहीं? आखिर भजन राज्य में कभी भी स्त्री कोई जा ही नहीं सकती है, इसका मतलब ये नहीं। हम तो देखते हैं कि भक्ति के शिखर पर पहुंचने वाली ये कृष्ण की जितनी भी अधिक से अधिक गोपियों से बढ़कर के कौन हो सकते, ये निष्किंचन दिन रात कृष्ण ही जिनका एकमात्र धन। इसलिए बतला रहा था क्या उनके पुत्र को ये लोग देखा, जैसे जब तक निष्किंचन नहीं होगा तब तक जो स्त्री रूपवान रूप में गर्व है, धन में गर्व है, सौंदर्य में गुण है और उच्च कुल में जन्म होने का जिनको अभिमान है, वो लोग कभी भी भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। और ये भला देखो तो कुबेर के कुल में जन्म लिया, शंकर जी की के कृपा पात्र हैं वो कुबेर, और ये ऐसा दुराचारी निकला। अच्छा ठीक, जिसको कभी कांटा कभी नहीं गड़ा वो दुख नहीं समझता है। एक तिरेक लाओ, तिरेक मैंने समझते हैं कील लाओ, ये तब समझेगा। ये वृक्ष होकर के रहे मरुभूमि में, वृक्ष बन करके रहे, कोई इसका हाथ कभी काट ले, कभी पैर काट ले, कभी केस उखाड़ ले, और तब ये समझेगा इसका क्लेश निवारण नहीं कर सकता। पेड़ की डाल काटने पर पेड़ कहेगा जो हमको मत काटो, उसके फल तोड़ लो, उसके पत्तों को ले लो, उसके छाल को उतार दो। अर्जुन एक पेड़ होता है ना, ये जमलार्जुन माने क्या, जमज अर्जुन के रूप में, तो उसके छाल आते हैं शरीर में, कहीं चोट वोट लग जाए तो उसके भी आते हैं। छाल उतार दिया ऊपर से नीचे तक, लो डाल काट लिए, तरह तरह के कष्ट पा रहे हैं, और एक पैर पर 40 लाख वर्ष खड़े रहो, एक पैर पर कैसा हाथ उठा करके पड़े रहो, या ऐसा हाथ कर दो नीचे ऊपर मत ले जाओ, कैसा होगा, कैसा लगेगा, जरा 5 मिनट करके के देखे तो, एक पैर पर खड़े होकर और 40 लाख वर्ष के लिए या 40 करोड़ वर्षों के लिए अभी संपादित खड़े रहो, पैर हाथ इसको काट लो, हाथ पैर कटे जा रहे हैं, छाल छुड़ा रहे हैं, चू तक मत करना, अपने वर्ष की बात नहीं रही, हाथ पैर बांध दिया, ईसा मसीह को ऐसे कर दिया, अब कील काटी, चल कर हाथ पैर। ऐसे ही वो तो महापुरुष थे, ऐसे ही इसको दंड दिया। अब तुम समझो ये दुख कष्ट कैसा होता है, रोने भी आने लग गया। नारद जी ने कहा अच्छा अब रोने भी आने लग गया, जाओ इतने करोड़ वर्षों के बाद में द्वापर में प्रभु आएंगे स्वयं, उनके चरण कमलों का स्पर्श हो जाएगा और तुम्हारा
उद्धार हो जाएगा।
क्या उद्धार हो जाएगा ये अभी कुछ नहीं पता, उद्धार की अभी उसको कोई दिमाग में कोई भावना ही नहीं, ये उद्धार किसको कहते हैं। उद्धार हो जाएगा, जाओ पेड़ होकर के साक्षात उसी समय में आकर के एकदम बन गया। आज करोड़ों वर्ष हो गए हैं, इतने दिन की बात कृष्ण को याद रहे। सत्याधिधातुम तुम भक्तों की बात भगवान को नहीं भूलती, सबकी बात भूल सकती है, भक्तों की बात नहीं भूलती, इसलिए याद रही। और याद रही कैसे, जोग माने माया ने याद दिलाई, पेड़ की बात हृदय उनकी बात में साथ ही साथ आई, पेड़ की बात नहीं बल्कि नारद जी की इस बात को किसी ने स्मरण कर दिया और प्रभु क्या किया, लोगों को प्रेरणा दी, चलो खेल खेलेंगे। बस सब बच्चे मिलकर के खेलने लगे और कृष्ण भी हंसते हुए चलने लगे आगे आगे। हंसना जोर से मत, शोरगुल मत करो, भैया यदि जान लेगी तो बीच में हम लोगों का खेल तमाशा बिगड़ जाएगा। उनको शांत करते हुए चलने लग गए। दरवाजे में आए तो देखा सामने के दरवाजा जो राजपथ पर जाता है उसमें मैया देख लेगी, उसमें से निकल नहीं सकते। पिछला जो दरवाजा है उसके पास ही में ये दो अर्जुन के वृक्ष खड़े, ओखल तो नीचे पटक दी और नीचे आ गए, किंतु पार जाने के लिए दोनों के बीच में जाना पड़ेगा और अटक गई ओखल। ओखल ऐसे चल रही है, कृष्ण ऐसे दोनों पर चल करके खींच रहे हैं, अकेले नहीं खींच सकते, सब बच्चे जितने हैं सब मिलकर के लगे। गोवर्धन धारण ने तो उठा ली, अब कुछ दिनों के बाद ही उठाने वाले, अभी 3.5 वर्ष के अभी है, यहाँ 7 वर्ष के हो जाएंगे उठा लेंगे गोवर्धन। तो उस समय में खींचने लग गए और फिर वहां पर जाकर के अटक गई। अब तो सब लोग मिलकर के चेष्टा कर रहे हैं ओखल को सीधा करें और पार कर दें, ये भी नहीं हो रहा, ओखल उठती नहीं,
इतना भार है,
इतनी भार है। कृष्ण और सब लोग मिलकर के ओखल को उठाया, उठी नहीं, सीधा नहीं हुई, खड़ी नहीं हुई, और ऐसे खींचे तो जाएगी नहीं, और उसको ले जाना जरूरी है। तो कृष्ण ने कहा ये जरा हटो तो मैं जरा देख, हटने करने से बच्चे सब वहां से पेड़ के नीचे से जरा थोड़े से हट गए। कृष्ण ने थोड़ा सा पैर अड़ा दिया, थोड़ा सा अड़ाया, एक पैर इसकी जड़ में और एक पैर उसकी जड़ में, और थोड़ा सा आगे बढ़ने की चेष्टा की, जहां पैर छुआ जोर नहीं लगाना पड़ेगा, बड़े जोर से शब्द हुआ मानो आकाश गिर गया, और बड़े जोर से शब्द करते हुए दोनों वृक्ष ऐसे नहीं गिरे, ऐसे बच्चे पहले से ही डर गए थे। जब आवाज सुना देखा जैसे कृष्ण तो बच गया, और बच्चे भी जो थे वो दोनों तरफ से वो इधर उधर नहीं थे, सामने थे, वो भी बच गए। और इतनी जोर से प्रचंड, कोई आंधी नहीं, प्रचंड शब्द हुआ। और उसी समय में नंद बाबा जा रहे थे स्नान करने के लिए, अभी बीच ही में थे, ब्रह्मांड घाट के करीब ही आ रहे थे। आज यशोदा मैया क्या कर रही है, अनमनी सी होकर के मंथन दंड हाथों में है, किंतु
चिंतन कर रही थी,
चिंतन करते करते हाथ उठ गया है, और गोपियां अपने घरों घरों में जहां जहां शब्द सुनते ही कहां से ये शब्द हुआ। अब उनको याद आई पुतना वध की, त्रिणा वर्त की, तकटासुर की, यशोदा जी उठ करके खड़ी हो गई, प्राण ठप हो गया, आगे गई देखी कि जहां उखल थी वो नहीं, बच्चे नहीं, कहां गए। नंद बाबा लौट पड़े शब्द की तरफ में, सब गोपियों का लाखों करोड़ों जितने गोप गोपी थे, सब बाल बच्चे वृद्ध वनिता सब गोप, जो सुधा जी देखा जैसे घर के बाहर जरा झांके, अरे ये क्या, दोनों से धीरे से प्रचंड से शब्द हुआ, कहां गया कृष्ण, अभी बाहर में आकर के देख रही, विभीषिका से एकदम डर गई, अब खून नहीं शरीर में, आंखों में आंसू नहीं, नंद बाबा जी आ गए। आते ही सबसे पहले नंद बाबा जी देखे कि सारी बीच में कन्हैया बैठा हुआ है, दूर से आते ही नंद बाबा को देख करके जोर से रो पड़े। गंगा नदी जो सूख गई थी और जमुना से प्रवाहित होने लगे और लंबे लंबे सांस लेने लगे। उस समय क्या हुआ, नमामीश्वरम सचिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले राजमानम। कुंडल अब सुक्ति के साथ नहीं डोलने लग गए, अभी तक स्थिर कुछ थे अब डोलने लग गए, आंखों से धाराएं निकलने लग गई। नंद बाबा जितने आए निकट उतने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर चलने लगे। नंद बाबा ने झट उनको गोदी में उठा लिया, बैठ गए। समझ नहीं सके ये माजरा क्या है, क्या कारण है, क्या हुआ, क्या समझ नहीं सके। इसके बाद में दूर जसोदार गोपियां सब खड़ी हैं, जसोदा जी अब निकट नहीं आ रही, डर के मारे नंद बाबा आ गए। नंद बाबा गंभीर हो गए, सोचा जरूर आज कुछ हुआ, इसके कमर में रस्सी क्यों, ओखल से बंधा हुआ क्यों, इसको बांधेगा कौन, एक के अतिरिक्त तो दूसरा कोई बांध नहीं सकता, जरूर कुछ अनहोनी घटी है। कृष्ण को साधु बना देते थे, बोले बेटा किसने बांधा, अरे तो रोने से फुर्सत नहीं, धीरे 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 जब तू संत बना हुई, किसने बांधा, मैया ने, पॉकेट से लड्डू निकाला, गुड़ का लड्डू, कैसा लड्डू,
चना या
गेहूं का भुना हुआ, गुड़हानी
गुड़धानी
गुड़धानी गुड़धानी चने को भूज लिया वो खिल गया है और उसमें गुड़ का पाग लगा दिया गया, ताजा ताजा बन जाता है, बना दिया है और पॉकेट से निकाल सकते। कृष्ण ले तो लिया किंतु अभी हिचकी, जो से लंबी लंबी सांसें नहीं और न तो उनके आंसू, धीरे धीरे संतना देते हुए गोदी में रख करके और उनको रख करके और खोलने लगे। जितने बच्चे थे वो सब एकत्रित हो गए, बलदेव जी भी आ गए। बलदेव जी ने अपना एक हाथ बाबा के कंधे पर रख दिया, देख रहे हैं भैया की तरह, बड़ा दुख हो रहा है किंतु करने का कुछ नहीं है, क्यों, मैया ने जो बांधा है बस। उन्होंने धीरे 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 कर करके उस बंधन को खोल दिया, जिसको बलदेव जी सेठ भी संकर्षण भी नहीं खोल सकते, ये बंधन और सब कुछ जो कुछ है ये धाम स्वरूप बलदेव जी नहीं खोल सके। और नंद बाबा ने धीरे 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 कर करके उसको खोल दिया, बोला जी बेटा खोला कौन, अब तो बाबा ने भैया क्या मिल जाएगा। धीरे धीरे उनका रोना कम, जसोदा की तरफ में बड़ी रोष भरी नजर से देखा, दोनों को दोनों अंकों में रख लिए गोदी में, अथवा एक को बाएं पर एक को दाहिने पर कंधों पर बिठा लिए और रोष में भरे हुए किसी से कुछ नहीं बोले। उपानंद इत्यादि देखते रह गए, आज उपानंद से भी नहीं बोले, किसी से नहीं बोले। एक बच्चा सुकुमार बच्चा, हो सकता है कि दही मक्खन खाया हो, चोरी किया हो या भांग तो दिया, और उसके लिए इतना, आज यदि मर जाता तो आज क्या हो जाता, इसकी इतनी भी बुद्धि नहीं है, इसलिए आज कोई भी नहीं उसे बोले। गए ब्रह्मांड घाट में स्नान, स्नान करने के बाद में घर लौटे, वहां पर पद्म गंधार धौली कालिंदी इत्यादि गायें थी, जाकर के कालिंदी गाय या धौली गाय उन्हें पॉकेट से मिश्री निकाली और बच्चों को मुख में दे दिया और घर 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 कर मुख में दूध पिला दिया। बज गया है कितना, 3-4 बज गए हैं, सवेरे का तो हो गया रसोई, शाम को भी घर में आग नहीं जली, रसोई बनाए कौन, सब चिंता में आते, आज दासियां तक भी चुपचाप। नंद बाबा लौट करके आए और बाहरी दरवाजे में बैठ के किसी से कुछ नहीं बोलते हैं, न चलते हैं, गंभीर होकर के बच्चों से खेल रहे हैं, बच्चे भी खेल रहे हैं। बच्चे में ये दो आज बच्चे हैं उनके पास। शाम हो गई, सूर्यास्त हो गया, गोपियों ने देखा जो यशोदा तो अब मरने मरने को, अब मरेगी बचेगी नहीं, और घर में अशांति है, घर में रसोई नहीं बनी, खाना नहीं, क्या होगा। वो उपानंद जी की स्त्री को ले लिया साथ में और वृद्ध महिलाओं को सब ले लिया जो नंद बाबा को शासन करने वाली है। उपानंद की स्त्री इनकी क्या लगेगी,
भाभी,
भाभी लगेगी नहीं? तो भाभी मैया के बराबर होगी, वो नंद बाबा को झिड़क सकती है, शासन कर सकती है। उस समय में नंद के पिता भरजन्य जी की स्त्री उनके नाम ले याद वो भी होंगी, वो सब उपस्थित हो गई और दलबद्ध होकर नंद बाबा के वहां गई राजभवन में, जहां पर उनकी बैठक। देखा जब कृष्ण उनकी गोदी में एक में और एक बलदेव बैठा, बलदेव को बुला लिया जरोनी ने, उसे पकड़ करके ले आ, पकड़ने गए तो आज धक्का ऐसा दे दिया कि वो बलदेव की छटक करके गिर पड़े, बस अपना मुंह लेकर के वो खड़े हो गए। उपानंद की स्त्री बोली, अरे बेटा तुम्हारी मैया रो रही है, मैया के पास चलो। रात में कहां रहेगा, सोएगा कहां, बाबा के पास। खेलेगा किसके साथ, बाबा और भैया के साथ। खाएगा क्या, धारोक्ष पीऊंगा, मैया के यहां नहीं जाएगा। अरे वो रो रही है भाई तुम्हारे लिए, और रोते रोते यदि जैसे आराम हो गया तो रत्न यदि मर गई तो बस मर गई का नाम सुनते ही बस सुना नहीं, बस मैया मैया का सके एकदम रोने लग गया। नंद बाबा ने देखो तो इसका, मैंने बंधन खोला सब कुछ किया और मैया के बिना रह नहीं सकता, मारने पर भी मैया, स्नेह पर भी मैया, बस मैया ही मैया है। मैया मैया का सचर उन्होंने नंद बाबा के आंसर समझी, आपकी उछल है। रोणी जी भी रोने लग गई, उपानंद की स्त्री भी रोने लग गई, जितना वहां परिस्थितियां महिलाएं थी सभी लोग रोने लग गए। कृष्ण तो एकदम हाथ ऐसा कर दिया मैया, रोणी जी ने अपने गोद में ले लिए और लेकर के चकरती हुई यशोदा जी के पास ले गई। यशोदा जी अब तक चोट से नहीं रो रही थी, आग में जल रही थी, कौन सी आग में, सुसानल, सुसानल होता है ना, सुसानल भयंकर होता है या जलती ही आग, सुसानल का कष्ट अधिक होता है, धड़धड़ाती ही आग में से जाएंगे प्राण खत्म हो जाएगा बस, और उसमें जलने का कष्ट होता है बस। यशोदा जी के गोदी में देते ही अब तो धक धक करके रोने लग गए। नंद बाबा ने कहा जो रोने दो, बिना रोए शांत नहीं रोए। सब लोगों ने देखा, जब रो लिया पूरा अच्छी तरह से तब अब सब ध्यान आरंभ कर दिया, समझाने पर कुछ शांत ना, अरे अब तो कुछ खिलाना है, बाबा भूखा है, बेटा भूखा है, घर वाले भूखे हैं। बस रोहिणी ने आग चेताई, दलिया रख दिया, दही कुछ तो सब ही, इसके बाद मुझे रसोई बनी। नंद बाबा को बुलाया गया, उपानंद जी आ गए, सुनंद जी आ गए, नंद नंदन आ गए, सब भाई लोग, भयवद्दीप और परिवार सब पूरा जुट गया, परोस करके सबको खिलाया। आज किंतु मन मौन है सभी। इसके बाद में धीरे धीरे भोजन जब आरंभ हुआ तो बातें चली। आज यशोदा जी सामने नहीं आई, 7 दिन तक नंद बाबा के सामने आई नहीं डर के मारे। एक दिन तब कृष्ण ने क्या किया, और अब तो इसके बाद में खिलाया पिलाया हो गए, 7 दिन तक नहीं आए, मामला समिट गया, किंतु आ नहीं गए। एक दिन यशोदा जी बैठी हैं, नंद बाबा घर में बैठे, कृष्ण ने उनका घूंघट हटाकर और उनका ये खैचन आरंभ किया। भैया खैचते खैचते लेकर के नंद बाबा के सामने लेकर के उनको खोल दिया। दोनों में सुलह हुई, फिर प्रेम का कलम मिट गया। इस प्रकार से कृष्ण की ये लीला हम लोगों को भी बहिषा कल्प करो। यशोदा मैया की
जय,
नंद बाबा की
जय,
वात्सल्य रस की
जय।
लीला का नमस्कार कर रहा हूं, वो लीला हमारे ऊपर में जा कर कल हमने जमनाथन संजय और उनका उद्धार लीला हमने वर्णन किया। जब दोनों पेट से निकले, पेट से निकल करके दुखन में बकरी देव कृष्ण को उन्होंने परिक्रमा की, बच्चे का भयभीत नजरों से उसे देख रहे हैं। कितनी सुंदर देवता नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत होकर के और उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। हाथ जोड़ कर सुना जाने कब तक उनसे सौ चुकी। अंत में कृष्ण के निर्देश करने पर उत्तर दिशा की तरफ मोह चले गए। श्रीमद्भागवत में इतना वर्णन, उसमें वर्ष के लिए कृष्ण से कहा, कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम लोग वर्मा संजातो मणि भावो व अभिष्ठित परमो भव। भगवान ने उनसे कहा संजातो मणि आओ, मेरी कृपा से मेरे स्पर्श से तुम्हारे हृदय में भाव उत्पन्न हो गया। कौन भाव? रति, रति उत्पन्न हो गई। अब यही धुंधली रति, धुंधली रति कृष्ण भक्तों के संग में जब ये करे और उसके हृदय में जो होगा भाव वही स्थायी रति रहती। इसलिए इन लोगों की दास्य रति हो स्थायी। क्या करेंगे? नारद जी की कृपा से नारद जी का इनका संग हुआ, नारद जी का संग और उनके भी संवाद से ये ब्रज में जन्मा है। तो नारद जी का संग हुआ तो चुंबक शीतल को नहीं आकर्षित कर सकता, सोना को भी आकर्षण नहीं करता, काठ को भी आकर्षण नहीं करेगा, चुंबक किसको आकर्षण करेगा? अपने जाति लोहे को भी आकर्षण। क्या हो गया? प्लस उनका आकर्षण ही ऐसा हो जाएगा तुम्हारे रूप में। जिन भक्तों के पास में गए हैं और जिनके साथ में संपर्क है वो ऐसे हैं। तो
देखने से मालूम होता है कि उनके स्वरूप में कुछ ऐसा ही था जो नारद जी से ही संपर्कित हुए, नारद जी का समूह उनको मिला, तो उनका जो कथावचन उनका होगा, तो उनका दास्य और सत्य दोनों था। इसलिए अभी तो बुद्ध भी गति हुई, फिर ये वर्णन नहीं मिलता कि उस जन्म में उन्होंने ब्रज में रह करके कुछ साधन किया, ये नहीं। उत्तर दिशा में चले गए, कहाँ सुबह सुबह चले गए और वहां रहता थे संकट जी के सामिध्य में या और भक्तों के सामिध्य में, उन्होंने कुछ साधन करने जरूर किया होगा। फिर हजारों कोटि जन्मों के बाद में फिर लीला में प्रवेश करेंगे, यहाँ पर प्रकट लीला में, अभी तक प्रकट लीला में केवल मात्र संपर्क हुआ और वहां पर ब्रजवासियों के संग में, सखाओं के संग में, दासों के संग में रह करके सब उनकी स्थायी गति होगी और स्थायी गति के अनुसार करके उनको ब्रज लीला में वो प्रवेश करेंगे। तो उन्होंने कहा कुछ में संजातो मई भावो अभिक्षित वह अवेक्षित परमो अफवा, परमो अफवह, अब तुम्हारा जन्म नहीं होगा, न भव अह, तुम्हारी मुक्ति हो गई। कौन सी मुक्ति हो गई? स्वरूप सिद्धि तुम्हारी हो गई, भाव से होने के बाद ही स्वरूप सिद्धि हो गई। नारद जी का संग हो सकता है कि नारद जी फिर कैलाश में गए हो और उनका संग हो, धीरे 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 साधन भजन करते 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 उनके प्रति दास्य और सत्य का भाव कुछ उत्प्रेरित हुआ हो, इसलिए कहते हैं ये मेरे प्रति जो भाव उत्पन्न, भाव माने किसको कहते हैं बतला सकते हैं आप? भाव शुद्ध तत्व संगीत और राजनीता का भगवान के नित्य परिसरों में नित्य सिद्ध होता है। जो भी जीवों में उनके अनुगत्य में भजन करने से भगवान या ऐसे रसिक नित्य परिसरों की कृपा से, आहत की कृपा से, जब साधक के हृदय में वह शुद्ध तत्व जब प्रतिफलित होता है तो चित्त को अत्यंत कोमलित द्रवित कर, कोमलित माने द्रवित कर देता है। इस प्रेम के आभास को, इस प्रेम रूप सूर्य के किरण को भाव, वो कहते हैं कि मई हमारे प्रति तुम्हारा यह भाव कहां से उत्पन्न होगा? नारद जी के प्रतिफलित हुआ। क्यों प्रतिफलित हुआ? अहे क्योंकि करुणा वर्ष उन्होंने कर दिया, जिस पर नजर पड़ गई उसका कोई कारण नहीं है, हेतु नहीं है, बिना हेतु के भी कर दिया, नजर पड़ गई क्यों उसकी खासियत नहीं हो गया। अब हो हवा न भवो, अब पुनः तुम्हारा जन्म मरण नहीं होगा। तात्पर्य क्या? पुनः अभी तो भाव उत्पन्न हुआ है, अगर जन्म मरण होगा नहीं तो क्या बीच में होगा? साधन होगा। वो साधन कैसे होगा? नारद जी के अनुगत्य में ही होगा। अब वो उन्होंने कहा जैसे प्रभु कृपा करके एक वरदान मुझे दीजिए, आपकी इन लीला कथाओं ने मेरी जहां कहीं भी ये लीला कथाएं हो, इन लीला कथाओं में हमारे प्रगाढ़ रुचि उत्पन्न हो जाए, यहां भी ये कथाएं हो, बड़े प्रेम के साथ में, श्रद्धा के साथ में इन कथाओं का सेवन कर सकते, जहां जहां आपके भक्त हैं वही वहीं मैं मेरा जन्म हो, जब जन्म हो और इन कथाओं का सेवन कर। भगवान ने कहा जो मत, अब उन कथाओं का सेवन करने का फल क्या है? गुरु जी शिष्यों को साधकों को हरि संदास सुनाते हैं, तो किस लिए सुनाते हैं? प्रकृति में अपने आबद्धता रखना, किस लिए सुनाते हैं? दूसरों को भी सुनाना, जैसे मैंने तुम्हारे प्रति ये किया कृपा, ऐसे तुम भी जन्म सार्थक कवि करो और होता जन्म सार्थक करके तुम भी दूसरों पर कृपा करो। ये नहीं कि दे दिया गुरु जी ने, अपना साधन वजन किया, एकांत में चले गए और दूसरे किसी पर कृपा नहीं की, अपने संकल्प पाइन रखा। प्रहलाद महाराज ने कहा वो कृपा है, वो साक्षी है जो अपने लिए सुनते हैं और अपने सुन करके जो दूसरों को सुनाते हैं वो गुरु की सेवा है, आचार्य की जो सेवा है, भगवान की जो सेवा है। इसलिए सुन करके दूसरों को भी सुनाया, अपने भगवान का भजन करने लगे, दूसरों को भी भजन कराए, तब तो कुछ गुरु जी से कुछ मुक्त होता, गुरु की इसी में प्रसन्नता। इसलिए नारद जी ने उनको ऐसे प्रस्तुत किया जो कथाओं को सुनते सुनते हरि कथा में जो रुचि हुई तो वो उसकी परिणति कहाँ तक गई। ये लोग वृंदावन के हरि कथा के पाठक बन गए और पक्का एक स्थिर जपन था, एक मधुपन था। स्निग्ध माने क्या है? जिनका पंथ अत्यंत सुंदर स्निग्ध है, अपने भी स्निग्ध हो रहे हैं और दूसरों को भी स्निग्ध करते हैं अपनी कथाओं से। और मधु वाले उनकी कथा से मधु डरती है, सबको मधु में कर देते हैं, मधु कथाओं से आज तक कर देते हैं। हरी कथा साधन है कि सिद्धि है? साधक है ना,
साधन
साधन कैसे हो साधन? अरे भाई साधन करके हरि कथा सुन करके या वर्णन करके क्या होगा? भगवान भी ले तो
अभिन्न
अभी साधन अवस्था में साधन साधन साधक हो, किंतु सिद्धावस्था में ये हरि कथा कहना ही साध है। इसलिए वहां पर साध्य के रूप में कृष्ण कृष्ण को, नंद बाबा को, यशोदा को और गोपियों को ऐसी ये कथा कहते हैं। गोलोक में बैठे हुए जो सब लोग कृष्ण सोचते हैं कि ये कभी अभी घटना प्रकट की जाती है और उसमें आविष्ट हो जाते हैं। कभी कभी राधा जी गृह में तड़पने लगती हैं, कभी कभी यशोदा मैया तड़पने लगती हैं दुख के मारे, जब अगासुर की बात, बकासुर की बात और सबकी बात सुनेगी और कृष्ण गोचारण करने के लिए चले जाते हैं। और जब ये कथा होने लगते तो मालूम होता है कि अभी अभी ये ठीक भगत लीला की बातें ये कह रहे हैं। इसलिए हरि कथा केवल साधन ही नहीं है, भगवान का स्मरण करना अभी साधन साधन भी है और साथ ही भगवान का नाम करना भी साधन भी है, अभी हम लोगों के लिए साधन है। भगवान उनको वर दे दिया, आप चले गए साधन करके, अंत में उनको स्निग्ध कंठ और मधु कंठ की का भाव उनको प्राप्त हुआ और वो नित्य में वहां पर फैला। वृंदावन में स्वर्ण प्रचारण अहम वक्त बहु पथार मातें वाद्यादिभूत सबन्न रेतो अवतार जंतु अवतार। और बड़े बड़े गोकुल में उत्पात होने लग गए, नंदगांव को छोड़कर के उनके बाबा पितामह आए थे, नंद बाबा में उनका जन्म नहीं हुआ था, हुआ था गोकुल में उनके पितामह
पर्जन्य
पर्जन्य रहते थे नंद गांव में, उग्रसेन के राज्य में रहते थे और विश्वभानु रहते थे विश्वभानुपुर वर्षा में, दोनों में प्रकार मित्रता, दोनों में किसी को संपत्ति नहीं थी। कुछ दोनों के बाद में विश्वभानु महाराज जी को सिद्धांत पैदा हुआ, किंतु नंद बाबा को कोई भी संपत्ति नहीं, इसलिए पर्जन्य बहुत तपस्या की। पर्जन्य जी के पिता का नाम सूरसेन था, सूरसेन की दो स्त्रियां, एक थी गोपिनी और एक क्षत्रिया अजामी, उनका नाम देवमी, देवमी की दो पत्नियां थी, तो एक से क्षत्रियाणी के गर्भ से सूरसेन पैदा हुए और गोपिनी से पर्जन्य। पर्जन्य माने होता है वे, तो उनकी थी गोपी से शादी हुई और इनकी हुई क्षत्रियाणी से, सूर के हुए वसुदेव पुत्र और पर्जन्य के हुए पांच उपानंद
अभिनंदन
और इनके केवल सूर से
वसुदेव
एक इनकी क्षत्रियाणी स्त्रियों से शादियां हैं। रोहिणी जी और रोहिणी जी की जितनी भी बहनें थी सात आठ या अठारह थी उनको याद नहीं है, तो जितनी भी थी उनसे इनकी शादियां हुई और पीछे से देवकी से शादी हुई। इस देवकी से हुए कृष्ण और बलदेव हुए रोहिणी, और उधर नंद बाबा के केवल एक ही और एक कन्या थी, कन्या भी जोगमाया पीछे से और कृष्ण में बड़े लड़के, एक ही दिन दोनों का जन्म होगा। अब कृष्ण कुछ धीरे 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 बड़े हो गए, उन लोगों ने देखा कि महाभंग तो चार तरफ से विघ्नता ये बन गया, चारों तरफ बिघनी थी, कभी आया पतुन आयु कभी तीन आवस कभी सत्ता दू कभी पूछ कोई सर्व कभी पूछ आ रहा। उपानंद जी ने बैठक बुलाई मीटिंग भेज, उसमें उन्होंने कहा कि अब गोकुल रहने लायक नहीं है महाभारत, अब इसको छोड़कर के अन्यत्र कहां चलना चाहिए, जहां आसानी से जिसका निर्वाह हो सके, गोचार हो सके, कोई विघ्न बाधा न रहे और पानी नदियों में पानी रहे, नदी का किनारा होना चाहिए, यहाँ पर गायों को आसानी से बुलाया जा सके, पानी पिलाया जा सके और चारागाह खूब सुंदर हो, फल फूल हो, जहाँ की बच्चों के मन भी लग जाए, क्रीड़ा और कौतुक का फल भी हो, ऐसे जगह में पता लगाया गया। और उपानंद जी ने कहा कि ये सब चीजें वृंदावन नाम है एक वन में 16 कोस इसकी परिधि है, इसमें सुंदर सुंदर पहाड़ भी हैं, सुंदर सुंदर झरने हैं, नदियां हैं, सरोवर हैं जो फूलों से कमलों से सब समय प्रफुल्लित रहती है, सुंदर सुगंध शीतल मंद रहती है, क्रीड़ा के भी करने बच्चों का भी मन बन जाएगा, वहां पर चलना ही। नंद बाबा राजे ठीक ऐसा ही किया, अब यहां पर रहना उचित नहीं, तरह तरह की विपत्तियां दिन रात संकाने के लिए आप ही करता है, फिर कर दिया और फेरी बजा दी गई, नगाड़ा बजने लग गया। नंद जी का महाराज जी का आदेश है
सभी लोग आज प्रस्तुत होंगे, कल सवेरे भोर में ही यहाँ से कुछ कर देना है। बस अपना जितना जो कुछ था गाड़ियों में, सफरों में और बड़े बड़े गाराओं में भर दिया, और दूध दही जो कुछ भी था मक्खन तक सब उस पर ले लिया। वृद्ध और बच्चों के लिए गाड़ियां तैयारी की है, करोड़ों करोड़ों गऊओं को सवेरे घास देना है, साथ साथ में जितने बछड़े सांड और दूसरे जो बछड़े हैं सबको लेकर के सब लोग जाए। कोई भी सोना मत, बहुत परिश्रम से आप लोग आए हैं और आए हैं, इसलिए सोना मत कोई भी। इतने कहने पर भी कोई तो आ रहेगा तो सब गड़बड़ी रह जाएगी। कोई भी खबरदार मत सोना, पर सब कुछ तैयार हो गया सवेरे सेवकों ने और वहां के प्रौढ़ लोगों ने गंगा और यमुना की धारा छोड़ दी गोकुल से वृंदावन की। गंगा और यमुना की धारा मानी काली और खबली गाय करोड़ों और उछलते हुए बछड़े मैंने राज हंस हूं ऐसे उछल कूद रहे हैं। लाइन लगी गोकुल से निकली महावन से और यमुना तक एकदम भर गया। अरे एक एक गोपों की 10-10, 20-20 लाख गायें, उसके बछड़े, ऐसा मालूम होता है कि ये धाराएं चल रही हैं। और बड़े बड़े दिल दौल वाले स्थान मानो ये ऐराव हाथी से भी बड़े बड़े ये सब स्थान, उनके दिल ऐसे, सिंह भी वैसे, आप आस पास चलते हुए भी लड़ रहे हैं, एक आगे से पीछे की तरफ मुड़ गया और एक सामने, और बच्चे चल रहे हैं, गाय चल रही हैं, चटा रही हैं, रंबा कर रही हैं, बड़ा सुंदर दृश्य था। लाइन बीच में नहीं टूटी, छपड़ों पर नंदरानी रोहिणी एक साथ में बैठ करके कृष्ण और बलदेव को गोदी में ले लिया और चल पड़ी। बूढ़े लोग भी और भी बच्चे वाली सब गोपियां गाड़ियों में कर सकती, लाखों गाड़ियों की कतार चल पड़ी। सोच रहे हैं ये गायों का चलना जरा खत्म हो जाए, आगे बढ़ जाए, तब ये गाड़ियों का चल। और अंत में जितने ब्रजवासी लोग हैं आगे आगे ब्राह्मण लोग मंत्र उच्चारण करके सांडिल जरीसी इत्यादि सब चल रहे हैं, मंत्र उच्चारण करते हुए चल रहे हैं। बड़ा ही सुंदर कृष्ण जब चलने लगे तो रास्ते में अजीब अजीब चीजों को देख करके कुछ शंकाय करते और मैया के करते और पूछते, प्रश्न और उत्तर होता जाता है। मैया जिनकी ये लंबी लंबी दाड़ियां झूल रही हैं, सिर से जटाएं निकल रहे हैं, ये कौन है? अरे इसको वट वृक्ष का
बरगद,
बरगद का पेड़ वट वृक्ष का। अरे मैया ये जो कांप रहा है, अनावश्यक ही कांप रहा है, बिना कार बिना हवा का भी कहीं पूरा कभी हवा हो तो पीपल के पत्ते ऐसे ऐसे कांप रहा है, ये कांपने वाला कौन है? तो इसे पीपल कहते हैं, पीपल कहते हैं। इसी तरह से ये बड़े बड़े सब हजारों तीर जिसमें निकले हुए हैं, ये कौन है?
ताल नारियल,
ताल और
नारियल,
नारियल के तीर। ये 10-12 तीरें जिसकी निकली हुई है, धारियां बड़ी सुंदर सुंदर पीली और काली, रहता हुआ प्राण भरता हुआ जो ये चल रहा है, ये कौन है? कुहू कुहू कर रही है ये कहां से बोल रही है? कृष्ण देखने लगे तो देखा कि हमारे जैसा ही इसका रंग है।
वही गुरु कृष्ण की भी आवाज वैसे ही कुहू कुहू की आवाज नकल करने लगे। पहले ये कौन है, ऐसे कोयल कहते हैं। इसी तरह से पशु पक्षियों का चलते ही सबका
ज्ञान हो रहा है,
ज्ञान होता है। जब किनारे पर पहुंचे, गाय खड़ी हैं, सब गाड़ियां खड़ी हैं, लोग खड़े हैं, लाख करोड़ों और कुछ खड़े, कहां पहुंचे, वहां से लोग बंद होते हुए जमुना के किनारे वहां पर आए। वहां से पार होना है, कैसे पार, जमुना में पानी आज जैसा नहीं है, उसको तो ऐसे ही लोग लांग जाते, पक्का पानी और अथाह पानी, उसमें उसमें बहुत घात प्रवास तीक्षण धार है, पार करना चाहिए, और उसमें भ्रमर पर रहे हैं, यदि कोई गया तो बस गया नीचे। सब लोगों ने मिलकर के केले के पेड़ कहां से काट लाए और उसको जोड़ दिया और उसके ऊपर में कुछ और चीजें रख दी और रख करके उसके ऊपर में बैठने लायक बना दिया और बच्चों को बूढ़ों को स्त्रियों को उस पर बैठा दिया। एक दो नहीं लाखों बनाए गए, बांस के मचान बनाकर और उसके भेले बना दिए गए और उस भेले पर बेले पर सबको बैठा करके उस पास किया। गायों को हाथ दिया गया नदी में, चढ़ाए कर अपने कंधों पर बच्चों को चढ़ा दिया इस पर, और जहां तक पानी कम है वहां तक तो जैसे